हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। जोया हल्दी के फंक्शन की सारी तैयारी करने के बाद ऊपर फ्लैट में आ गई थी और उसने देखा रिया ने दो बहुत खूबसूरत पीले रंग के लहंगे निकाल रखे थे। रिया के जोर देने पर जोया ने भी येलो कलर का, जिसमें बेहद बारीकी से काम किया गया था, उसे पहन लिया था और उसके साथ रिया की लाई हुई मैचिंग ज्वेलरी। ओह क्या कहने, जोया किसी स्टेट की प्रिंसेस लग रही थी। अगर कोई उसे एक बार देखता तो देखता रह जाता। जोया और रिया दोनों ने एक दूसरे को तैयार होने में मदद की। तभी अकरम भी येलो कुर्ता पजामा पहनकर वहां आ पहुंचा और जोया और रिया को देखकर कहने लगा, भाई ये क्या हो रहा है? जोया हैरानी से, क्या हुआ भाई, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब अकरम ने कहा, तुम दोनों ने एक बार खुद देखा है? तुम दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो चांद अपने सभी सितारों के समेत धरती पर उतर आया हो। अकरम की बात सुनकर वो दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उन दोनों को हंसता हुआ देख अकरम ने मन ही मन दुआ करी और बोला, हे ऊपर वाले, इन दोनों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। तभी अकरम ने जोया से कहा, अरे जोया, तुमने बिल्डिंग और आसपास के लोगों से तो कह दिया था ना हल्दी के फंक्शन में आने के लिए, क्योंकि बेटा मैंने पूरे 500 लोगों के लिए खाना बुक कर दिया है। जोया अकरम की बात सुनते ही कुछ सोचने लगी और बोली, भाई वैसे तो करीब करीब सभी के यहाँ मैंने बुलावा भेज दिया है, लेकिन एक बड़ा सा महल जैसा घर है उसमें अभी तक बुलावा नहीं गया है। अकरम, पर उस घर में बुलावा क्यों नहीं दिया जोया? वो भाई, एक तो मैंने सोचा शायद वो लोग कुछ ज्यादा ही अमीर हैं, कभी ना आए, और फिर मुझे टाइम भी नहीं मिला था, जोया ने लीपा पोती करते हुए कहा। जोया की बात सुनकर अकरम ने उसे कहा, बेटा जब हमने अपनी खुशियों में शामिल होने के लिए अपनी पूरी बिल्डिंग और आसपास के घरों में रहने वाले लोगों को बुलाया है तो फिर ऐसे में एक घर छोड़ना कोई अच्छी बात नहीं है। वो लोग आए या ना आए, लेकिन हमारा उन्हें बुलाने का फर्ज बनता है। जोया, भाई आप ठीक कह रहे हैं और आप बिल्कुल फिक्र न करें, हल्दी की रस्म शुरू होने से पहले पहले मैं खुद उस घर में जाऊंगी और बुलावा दे आऊंगी, जोया ने मुस्कुराते हुए कहा। अकरम ने भी हाँ में सिर हिला दिया और वो तीनों नीचे पार्क की ओर चल दिए। और जैसे ही रिया और अकरम पार्क में गए, वो वहाँ की खूबसूरती को देखकर मन मुग्ध हो गए और रिया की आंखों में तो खुशी के आंसू आ गए और वो खुश होकर जोया के गले लग गईं। तभी जोया के वो चारों दोस्त वहाँ आ पहुँचे और सब के सब आज येलो कलर के कुर्ते पजामे में थे। जोया उन लोगों को देखकर काफी खुश हो गई थी और उसने जॉन के थ्रू सबको बताया कि वो लोग इंडियन लुक में बहुत अच्छे लग रहे हैं। जोया की बात सुनते ही उन सभी के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई थी। जोया ने उन चारों को इशारा किया और फंक्शन शुरू करने के लिए कहा। और जैसे ही अकरम और रिया हल्दी के स्टेज की तरफ बढ़ने लगे, उनके ऊपर फूलों से बरसात होने लगी थी। जॉन और डैनियल को जोया ने फूलों की बरसात करने का काम सौंपा था, जो उन्होंने बखूबी किया था। रिया और अकरम की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था और जितने भी उस बिल्डिंग और आसपास के लोग वहां आए थे, वो इतनी खूबसूरती देखकर झूम उठे थे। और जैसे ही रिया और अकरम पर फूलों की वर्षा हुई, वो सब खुशी से शोर मचाकर तालियां बजाने लगे। सब कुछ बेहद अच्छा लग रहा था, कहीं भी नेगेटिविटी नहीं थी। तभी इसी बीच जोया को याद आया कि ये उसे तो उस महल जैसे घर में भी जाना है और वैसे भी हल्दी लगने में अभी टाइम था, सो जोया ने सोचा इतने तो वो आराम से उन लोगों को जाकर बुलावा देकर आ भी सकती है। सो उसने अकरम से कहा, भाई मैं एक बार उस घर में और चली जाती हूँ और उन्हें इनवाइट कराती हूँ। तब अकरम ने कहा, तुम रहने दो ना, किसी और को भेज दो, तुम्हारी यहाँ ज्यादा जरूरत है। तब जोया ने कहा, ओहो भाई, आपने ही तो कहा था हमें उन्हें इस तरह नहीं भूलना चाहिए था, और अगर अब कोई नौकर वगैरह जाएगा तो उन्हें जरूर बुरा लगेगा कि एक तो हम लोगों ने उन्हें लेट इन्वाइट किया है और ऊपर से खुद भी नहीं गए, किसी नौकर को भेज दिया है। और भाई थोड़ी देर की तो बात है, मैं यूं गई और यूं आई, आप परेशान मत हो। अकरम, अच्छा ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आओ, अकरम ने मुस्कुराकर कहा। तभी जोया अकरम और रिया का हाथ पकड़कर एकदम पीले और गुलाबी फूलों से सजी हुई स्टेज पर ले गई और फूलों से सजा हुआ एक ब्यूटीफुल से सोफे पर उन दोनों को बैठा दिया। और रिया और अकरम के स्टेज पर बैठते ही लगातार 4-5 बम फूटने लगे और सभी लोग खुशी से चिल्लाने लगे। इसी बीच जोया ने कहा, भाई मैं अभी आती हूँ, तब तक मैं प्रोग्राम शुरू करा देती हूँ। ऐसा कहकर जोया ने जॉन की ओर कुछ इशारा किया, तभी बाकी के तीन लोग ढोल बजाते हुए वहां आ गए और सभी लोग खुशी से झूमने नाचने लगे। और जोया सबके बीच में से होती ही राठौड़ मैंशन की ओर चल पड़ी थी। वहीं दूसरी ओर अबीर राठौड़ को उन बम फूटने की आवाज और लोगों के खुशी से चिल्लाने की आवाज राठौड़ मैंशन में भी बखूबी सुनाई दे रही थी। अबीर तो आज वैसे ही काफी दुखी था। एक तो उसे अपनी माँ की याद आ रही थी, दूसरा जोया का कहीं कुछ पता नहीं चल पाया था। वो तो बस जोया के दिए जख्म को कुरेदने में लगा था। और इस बीच ये खुशी की आवाजें, आतिशबाजी की आवाजें उसे एकदम जहर लग रही थीं। उसका मन तो कर रहा था कि वो उस जगह जाएं और सबके गोलियों से भून डालें, लेकिन उसका दर्द उस वक्त इतना था कि वो कहीं जाने की हिम्मत ही नहीं कर पाया और एकदम टूटा हुआ सा वहीं बेड पर लेट गया। उस वक्त अबीर राठौड़ की हालत किसी मजनू से कम नहीं थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था जिसके लिए वो तड़प रहा है वो खुद चलकर कुछ ही देर में उसके पास आने वाला था। वहीं दूसरी ओर सुधाकर जी अनुराधा की ऑलमोस्ट पूरी डिटेल्स निकाल चुका था और वो आज राजवीर को मिलकर पूरी जानकारी देने वाला था। राजवीर अपने सिस्टम में बैठा हुआ कुछ काम कर रहा था, अचानक मेहर पीछे से आ गई और उसने राजवीर के लैपटॉप में झांक कर देखा तो उसकी आंखें भर आई थी, क्योंकि उस वक्त राजवीर जोया की दुल्हन बनी हुई फोटो देख रहा था जब वो दुल्हन बनकर उसे ड्रोन कैमरा के थ्रू फ्लाइंग किस दे रही थी। राजवीर को रह रहकर जोया की याद आ रही थी और वो केवल इसी बात को सोच सोच कर पछताए जा रहा था, जब वो उसके इतने करीब थी तो क्यों उसने उसके साथ टाइम नहीं बिताया, क्यों वो उससे शादी करने के बारे में सोचने लगा, क्यों उसने उसके साथ अपनी रातें रंगीन नहीं की। राजवीर बड़ी ही बेशर्मी से लैपटॉप की स्क्रीन पर अपना हाथ फेरते हुए कहा। ये सब देखकर मेहर की आंखों से आंसू टप 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 बहने लगे थे और जब उसके आंसू का एक कतरा राजवीर के लैपटॉप पर गिरा और उसने पीछे मुड़कर देखा और वो मेहर को देखकर हैरान रह गया। तब वो उठा और मेहर को कंधों से पकड़कर बेड पर बैठा दिया और उसके आंसू साफ करने लगा और बोला, तुझे पता है जोया के साथ रात गुजारने का मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ तेरी वजह से अधूरा रहा था। राजवीर बड़े ही गंदे तरीके से मेहर से बात कर रहा था और मेहर अपनी आंखें फाड़ कर उसे देख रही थी। और राजवीर आगे बोला, तुझे पता है मैंने तुझसे शादी क्यों की, ताकि एक तो मुझे औरत की कमी कभी भी महसूस न हो और दूसरी तेरे भाई की पावर और उसका जोया के साथ 5 रातें गुजारने का वादा, बस यही लालच था जो तुझसे शादी की मैंने। और अब चल कपड़े उतार और वो दे जो मुझे चाहिए।
ऐसा कहकर राजवीर एक बार फिर मेहर पर टूट पड़ा और उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। पूरे 1-1.5 घंटे के बाद जब राजवीर का खूब मन भर गया, तब उसने एक चादर न्यूड मेहर पर डाल दी और उसके बालों से पकड़कर उसे बैठाया और बोला, मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। अगर तूने अपने भाई से मेरी शिकायत की तो मैं तुझे तलाक दे दूंगा और फिर कभी तेरी शादी नहीं हो पाएगी और न ही कभी कोई और मर्द तेरी जिंदगी में आएगा, क्योंकि एक इज्जत लूटी लड़की को कोई भी शरीफ आदमी अपनाना पसंद नहीं करता है, समझी तू? मेहर को तो ऐसा लग रहा था मानो उसके जिस्म में जान ही न बची हो। उसे राजवीर के बारे में उस दिन फैक्ट्री में पता तो चल गया था, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं थी। लेकिन अब जब राजवीर ने बिल्कुल खुलकर उससे बात की और उसे उसकी औकात दिखा दी, तब जाकर वो समझी थी और मन ही मन दुआएं कर रही थी कि अच्छा हुआ जोया की शादी इस घटिया इंसान से नहीं हुई, कम से कम उसकी जिंदगी तो बच गई थी इस घटिया इंसान से। अब बस मैं यही दुआ करती हूँ जोया जहाँ भी हो वो खुश रहे और वो इन दरिंदों को कभी न मिले। वहीं अरहम अब धीरे धीरे बोलने की कोशिश करने लगा था और जब उसकी देखभाल करने वाले एक लड़के ने अरहम को दवाई देनी चाही थी, तब उसने अपने मुंह से मना कर दिया था। अरहम के मुंह से नहीं की आवाज़ सुनकर वो लड़का काफ़ी खुश हो गया था और सीधा भागकर अरमान के कमरे में चला गया था। लेकिन अरमान उस वक्त बाथरूम में था और तब वो लड़का अरमान को कमरे में न पाकर वापस लौट आया था और अरहम में आई इम्प्रूवमेंट की खबर अरमान तक पहुंचते पहुंचते रह गई थी। वहीं अरहम आधे से ज्यादा ठीक हो चुका था, लेकिन इस वक्त वो दिल से नहीं दिमाग से काम ले रहा था। वो जानबूझकर अभी भी अपने आप को बहुत बीमार दिखा रहा था, ताकि उसको इस हालत में देख अरमान अपने दिल की सारी बात खुलकर उससे कर सके, क्योंकि अरमान जब भी उसके पास आता था तब उसे बीमार और बेजुबान समझकर वो दिल खोलकर अपनी सारी बातें, जोया के खिलाफ प्लानिंग सब उससे शेयर कर देता था। अभी भी अरहम सिर्फ और सिर्फ इसलिए चुप था ताकि अरमान के दिल में अब जो भी प्लान चल रहा था जोया को लेकर, वो उसके बारे में अरहम को बता दे। और अरहम उस प्लान को जानने के बाद उसे आसानी से खत्म कर सके, क्योंकि ये बात तो पक्की थी कि अरमान किसी के भी कहने पर जोया को नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि जोया अब उसकी जिद और अना का मसला बन चुकी थी और अरमान सब चीज़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर सकता था लेकिन अपनी जिद और अना के साथ कभी नहीं। प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड कॉमेंट्स, प्लीज़।